ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद हफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द कुमार जगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे भी समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि सभी नेता कल शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में इन नेताओं की उपस्थिति भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण को भी दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाती है। राष्ट्रपति भवन में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह आज और इस महीने की 15 और 22 तारीख को आयोजित नहीं होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होने वाले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह तथा दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन की तैयारियों के कारण लिया गया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक राजधानी नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित हैं। बैठक में लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा होगी। इसके अलावा शाम को नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों के कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह विजयवाड़ा में होगा। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव जीत लिया है। ये उपचुनाव 27 मई को हुआ था और मतों की गिनती 5 जून को की गई थी। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोग मारे गए हैं और 6 घायल हो गए हैं। हादसा आज सुबह 3:38 पर हुआ। अग्निशमन विभाग ने कहा कि सुबह फोन कॉल से घटना की जानकारी मिलने पर 14 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि यह दुर्घटना गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइनों में रिसाव के कारण हुई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के बारे में जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। इनाडू ग्रुप के संस्थापक और मीडिया की जानी मानी हस्ती रामोजी राव का आज सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके पार्थिव शरीर को रामोजी फिल्म सिटी में उनके आवास पर रखा गया है, जहां उन्हें परिजन और प्रशंसक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रामोजी राव इनाडू ग्रुप मार्गदर्शी चिटफंड रामोजी फिल्म सिटी और प्रिया फूड्स सहित अनेक कारोबारों का प्रबंधन करते थे। एक समय में तेलुगु भाषी क्षेत्रों में उनके नेतृत्व में इनाडू प्रमुख मीडिया समूह था और राजनीति में वो काफी प्रभावशाली थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप में आज सुबह अमेरिका के टेक्सास में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 124 रन बनाए। दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने उलटफेर करते हुए न्यूजीलैंड को 84 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।